नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं फरहत नाज। और अब मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से दो दिन की राजकीय यात्रा पर इजराइल जाएंगे। बांग्लादेश पिछले वर्ष आवामी लीग सरकार के पतन के बाद दर्ज सभी मामलों की समीक्षा करेगा। यूरोपीय संघ ने अमरीका द्वारा लागू किए गए नए 15% वैश्विक टैरिफ के बाद व्यापार समझौते के खतरे में पड़ने की चेतावनी दी। और मैक्सिको में ड्रग माफिया की हत्या के बाद भड़की हिंसा में मैक्सिकन नेशनल गार्ड के 25 सैन्यकर्मियों की मौत। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दो दिन की इजराइल यात्रा पर रवाना होंगे। तेल अवीव में प्रधानमंत्री मोदी इजराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। इसके बाद श्री मोदी यरूशलम में कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे। उधर इजराइल में भारत के राजदूत जेपी सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इजराइल यात्रा ऐतिहासिक सिद्ध होगी। यरूशलम में आकाशवाणी समाचार से बातचीत में श्री सिंह ने कहा कि इजराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू से वार्ता के अलावा श्री मोदी इजराइल के राष्ट्रपति इसहाक हरजोग से भी मुलाकात करेंगे और इजराइल की संसद क्नेसेट को संबोधित करेंगे।
प्रधानमंत्री मोदी इजराइल की संसद क्नेसेट को संबोधित करेंगे। ये किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा दिया जाने वाला पहला संबोधन होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्नेसेट को संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री होंगे। ये एक अत्यंत महत्वपूर्ण भाषण होगा। क्नेसेट के माध्यम से प्रधानमंत्री इजराइल और साथ ही भारतीय नागरिकों को भी संबोधित करेंगे। मुझे लगता है कि पूरा इजराइल इसे देखेगा और उनका भाषण सहयोग के विभिन्न क्षेत्रों पर केंद्रित होगा।
विल फोकस ऑन वेरियस एरियाज ऑफ कोऑपरेशन।
श्री सिंह ने कहा कि जब प्रधानमंत्री मोदी ने वर्ष 2017 में इजराइल की यात्रा की थी, तब उन्होंने श्री नेतन्याहू के साथ मिलकर द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने की नींव रखी थी। श्री सिंह ने कहा कि अब समय आ गया है कि उस रणनीतिक साझेदारी को नई ऊंचाइयों तक ले जाया जाए। उन्होंने कहा कि दोनों प्रधानमंत्रियों के बीच वार्ता के बाद कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। श्री सिंह ने कहा कि भारत और इजराइल की आतंकवाद के विरुद्ध कड़ी नीति है।
On terrorism front, India's policy is very clear.
आतंकवाद के मुद्दे पर भारत की नीति बिल्कुल स्पष्ट है। जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार कह चुके हैं कि आतंकवाद के खिलाफ हमारी नीति जीरो टॉलरेंस की है। मुझे लगता है कि इस मामले में भारत और इजराइल दोनों एक ही राह पर हैं। और जब भी कोई संकट आया है तो दोनों देश एक दूसरे के साथ मजबूती से खड़े रहे हैं।
Both the countries stand with each other.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इजराइल यात्रा को कवर करने गए हमारे विशेष संवाददाता धीरज काकड़िया की यरूशलम से पेश है ये खास रिपोर्ट।
इजराइल में भारतीय समुदाय एक जीवंत और विविध समूह है, जिसमें लगभग 85,000 यहूदी भारतीय मूल के लोग और लगभग 18,000 से 20,000 भारतीय नागरिक विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत हैं। इजराइल में भारतीय यहूदी समुदाय का इतिहास कई दशकों पुराना है। इनमें से अधिकांश लोग 1950 और 1960 के दशक में भारत से इजराइल चले आए थे। जो ज्यूस लोग यहूदी लोग भारत से यहां आए हैं, वो भारत की अपनी अच्छी यादों को साथ में लेकर आए हैं। इजराइल के समाज में वे पूरी तरह से यहां एकीकृत हो गए हैं और विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान भी कर रहे हैं। इजराइल में जो भारतीय नागरिक हैं, वो अलग अलग क्षेत्रों में कार्यरत है, जिसमें हेल्थ देखभालकर्ता के रूप में, केयर गिवर्स में, डायमंड के ट्रेडर्स हैं, आईटी पेशेवर में भी बहुत लोग हैं और यहाँ छात्र अभ्यास के लिए भी आते हैं। इजराइल की अर्थव्यवस्था में ये सब यहूदी और अन्य लोग महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं और देश की सांस्कृतिक विविधता को भी बढ़ावा दे रहे हैं।
बांग्लादेश के गृह मंत्री सलाउद्दीन अहमद ने 5 अगस्त 2024 के बाद दर्ज सभी मामलों की नए सिरे से समीक्षा करने के आदेश दिए हैं। ये कदम शेख हसीना की अवामी लीग सरकार के पतन के बाद उठाया गया। एक रिपोर्ट।
बांग्लादेश के गृह मंत्री सलाहुद्दीन अहमद ने कहा कि इसका उद्देश्य निर्दोष नागरिकों को अनावश्यक उत्पीड़न से बचाना है। उन्होंने सचिवालय में कल विभागों और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के प्रमुखों के साथ 3 घंटे तक बैठक की। पत्रकारों से बातचीत में गृहमंत्री ने कहा कि पुलिस को मुकदमों की फिर से जांच करने और सरकार को रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि कानून का शासन सुनिश्चित करने और निर्दोषों का उत्पीड़न रोकने के लिए मामलों की गहन जांच की जाएगी। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि उत्पीड़न मामले में किसी पुलिसकर्मी की भूमिका पाई गई तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की। कानून व्यवस्था के मुद्दे पर गृहमंत्री ने कहा कि मांगों और शिकायतों के लिए राजमार्गों को अवरुद्ध करना स्वीकार्य नहीं है और असंतोष को कानूनी माध्यमों से उठाया जाना चाहिए। राष्ट्रपति मोहम्मद सहाबुद्दीन की टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया देते हुए गृहमंत्री ने कहा कि हर व्यक्ति को अपने विचार व्यक्त करने का अधिकार है। साथ ही उन्होंने आश्वासन दिया कि सभी नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा की जाएगी। ढाका से नवल संघ परमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं प्राची वाजपेयी।
विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका के विदेश विभाग के एक अधिकारी ने बताया है कि ईरान को लेकर बढ़ते तनाव और संभावित सैन्य हमले की आशंका के मद्देनजर अमेरिका ने बेरूत स्थित अपने दूतावास में तैनात गैर जरूरी राजनयिकों और उनके परिवार के सदस्य को लेबनान छोड़ने का आदेश दिया है। अधिकारी ने कहा कि क्षेत्रीय सुरक्षा स्थिति के निरंतर आकलन के बाद यह निर्णय लिया गया है ताकि दूतावास में केवल जरूरी कर्मचारी ही रहें। उन्होंने बताया कि यह अस्थायी कदम है और बेरूत स्थित अमरीकी दूतावास कामकाज जारी रहेगा। इस बीच ओमान के विदेश मंत्री बद्र अल बुसैदी ने कहा कि अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु मुद्दे पर अगली वार्ता बृहस्पतिवार को जिनेवा में होने की योजना है। यूरोपीय संघ ने अमेरिका को चेतावनी दी है कि नए टैरिफ फैसले के बाद दोनों पक्षों के बीच हुए व्यापार समझौते खतरे में पड़ सकते हैं। ये चेतावनी उस समय आई है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सभी आयात पर 15% का नया वैश्विक शुल्क लागू करने की घोषणा की है। एक रिपोर्ट।
राष्ट्रपति ट्रंप का ये कदम उस फैसले के बाद आया है जब अमरीकी सर्वोच्च न्यायालय ने पिछले वर्ष लागू की गई उनकी वैश्विक टैरिफ नीति को खारिज कर दिया था। इस नीति से लंबे समय से चली आ रही वैश्विक व्यापार व्यवस्था प्रभावित हुई थी। यूरोप और लंदन के अधिकारियों ने वैश्विक व्यापार संबंधों में आए इस नवीनतम उथल पुथल पर चिंता और व्याकुलता व्यक्त करते हुए कहा है कि ट्रंप की नई शुल्क नीति पिछले साल अमरीका के साथ हुए व्यापार समझौतों को उलट सकती है। यूरोपीय संघ के अधिकारियों ने व्हाइट हाउस से नई शुल्क नीति से संबंधित व्यापार समझौतों पर व्यवहारिक असर को लेकर स्पष्टता भी मांगी है। वर्तमान में यूरोपीय संघ के अधिकांश निर्यात पर 15% और ब्रिटेन से होने वाले निर्यात पर 10% शुल्क लगाया गया है। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
मेक्सिको के जलिस्को प्रांत में ड्रग माफिया की मौत के बाद भड़की हिंसा में नेशनल गार्ड के करीब 25 सैन्य कर्मियों की मौत हो गई है। एल मेंचो के नाम से पहचाने जाने वाले तस्कर नेमेसियो उसगुएरा सर्वेंट्स की विशेष बल द्वारा हिरासत में लिए जाने के कुछ देर बाद ही मौत हो गई, जिसके बाद करीब 20 राज्यों में अशांति फैल गई। बताया जा रहा है कि जलिस्को राज्य के तापलपा कस्बे के बाहर एक सैन्य अभियान में घायल होने के बाद हेलीकॉप्टर में उसकी मौत हुई। अमेरिका ने इस कुख्यात ड्रग्स तस्कर की गिरफ्तारी की सूचना देने पर $1.5 करोड़ के इनाम की घोषणा की थी। जलिस्को न्यू जनरेशन कार्टल मेक्सिको के सबसे कुख्यात आपराधिक संगठनों में से एक है। एल मेंचो ने इसी संगठन की अगुवाई करता था और मेक्सिको का सबसे वांछित अपराधी था। सुरक्षा मंत्री उमर गार्सिया हारफूज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों को बताया कि विभिन्न हमलों में कार्टल के 30 सदस्य और एक आम नागरिक की मौत हुई है, जबकि 7 राज्यों में कम से कम 70 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी 26 फरवरी को भारत की यात्रा पर आ रहे हैं। श्री कार्नी 7 मार्च तक भारत में रहेंगे। ये यात्रा दोनों देशों के संबंधों में एक नए अध्याय की शुरुआत मानी जा रही है। पिछली सरकार के कार्यकाल में तनावपूर्ण संबंधों के बाद कनाडा के किसी नेता की ये पहली आधिकारिक भारत यात्रा है। श्री कार्नी मुंबई में व्यापारिक नेताओं से भेंट के साथ अपनी यात्रा शुरू करेंगे। वे 2 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उच्च स्तरीय वार्ता के लिए नई दिल्ली पहुंचेंगे। दोनों नेता स्वच्छ ऊर्जा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रक्षा और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नए साझेदारियों पर ध्यान केंद्रित करेंगे। इस यात्रा का देश व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते के लिए वार्ता को गति देना है। इस व्यापार समझौता को एक वर्ष में अंतिम रूप दिया जा सकता है। इसका महत्वाकांक्षी लक्ष्य वर्ष 2030 तक दोनों देशों के बीच व्यापार दोगुना करके $50 अरब से अधिक करना है। आईसीसी T20 क्रिकेट विश्व कप के सुपर 8 में आज इंग्लैंड का सामना पाकिस्तान से होगा। श्रीलंका के पल्लिकेले में ये मैच शाम 7 बजे से खेला जाएगा। प्रतियोगिता में कल वेस्टइंडीज ने जिम्बाब्वे को 107 रन से हरा दिया। मुंबई में वेस्टइंडीज ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट पर 255 रन बनाए। जवाब में जिम्बाब्वे की टीम 17 ओवर और 4 गेंद में केवल 147 रन पर सिमट गई। शिमरोन हिटमेयर को मैन ऑफ द मैच घोषित किया गया। और ब्रिस्बेन में महिला क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया के साथ पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले में भारत ने ताजा समाचार मिलने तक 13 ओवर में 3 विकेट पर 60 रन बना लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 2 दिन की राजकीय यात्रा पर इजराइल जाएंगे। बांग्लादेश पिछले वर्ष अवामी लीग सरकार के पतन के बाद दर्ज सभी मामलों की समीक्षा करेगा। यूरोपीय संघ ने अमेरिका द्वारा लागू किए गए नए 15% वैश्विक टैरिफ के बाद व्यापार समझौते के खतरे में पड़ने की चेतावनी दी और मैक्सिको में ड्रग माफिया की हत्या के बाद मैक्सिकन नेशनल गार्ड के 25 सैन्यकर्मियों की मौत। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।